का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी मध्यवल्तनी का दूसरा एवं अंतिम भाग। आज कहाँ है वह बल जिस बल पर हर सुंदरी ने सोचा था कि वह पति के लिए जीवन पर्यंत अपने प्रेम के अधिकार का आधा हिस्सा निशंक छोड़ दे सकती है। सहसा किसी पूर्णिमा रात्रि में जब ज्वार आता है, तब दोनों किनारे पल्लवित कर मनुष्य सोचता है, मेरी कहीं सीमा नहीं। उस समय जो एक विराट प्रतिज्ञा कर बैठता है, जीवन के सुदीर्घ भाटे के समय उस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उसके संपूर्ण प्राणों में खिंचाव पड़ता है। अचानक ऐश्वर्य के दिनों में लेखनी के एक झटके से जो दान पत्र लिखा जाता है, चिर दारिद्र्य के दिनों में पल पल तिल तिल कर उसे चुकाना पड़ता है। तब समझ में आता है मनुष्य बड़ा दीन, उसका हृदय बड़ा दुर्बल, उसकी क्षमता बड़ी ही सामान्य है। दीर्घ रुहावासान के शीन रक्तहीन पीली देह में हर सुंदरी उस दिन शुक्ला द्वितीया के चांद के समान एक हल्की सी रेखा मात्र थी। गृहस्थी में नितांत बेजान सी उतरा रही थी। उसे लगा, मुझ जैसे कुछ भी नहीं के ना होने पर भी चलेगा। धीरे धीरे उसका शरीर बलि हो उठा, खून का तेज बढ़ने लगा। तब हर सुंदरी के मन में न जाने कहां से ढेर सारे मनोभाव आ उपस्थित हुए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, तुम तो त्याग पत्र लिखकर बैठी हो, पर हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हर सुंदरी ने जिस दिन पहली बार अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया, उसी दिन निवारण और शैलबाला को अपना शयन कक्ष सौंप अलग कमरे में अकेली जाकर सो रही। 8 वर्ष की उम्र में वासर रात्रि में जिस शैया पर प्रथम शयन किया था, आज 27 वर्ष बाद उसने उसी शैया को त्याग दिया। दीपक बुझाकर वह सधवा स्त्री असह्य हृदय भार लेकर अपनी जब नई वैधव्य शैया पर आ गिरी थी, तब गली के दूसरे छोर पर एक शौकीन युवक विहाग रागिनी में मालिनी गान गा रहा था और दूसरा तबले पर संगत कर रहा था। श्रोतावृंद सम पर हाय हाय स्वर में चिल्ला पड़ते थे। उसका वह गाना उस निस्तब्ध चांदनी रात में बगल के कमरे में सुनने में अच्छा ही लग रहा था। तब बालिका शैलबाला की उनींदी आंखें ऊंघ रही थी और निवारण उसके कानों के पास मुंह रखकर धीरे धीरे पुकार रहा था, सखी। इसी बीच इस व्यक्ति ने बंकिम बाबू का चंद्रशेखर पढ़ लिया था और 2-1 आधुनिक कवियों का काव्य भी शैलबाला को पढ़कर सुनाया था। निवारण के जीवन के पिछले हिस्से में जो एक यौवन उत्स बराबर दबा हुआ था, आघात पाकर सहसा असमय ही उच्छ्वासित हो उठा। कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण अकस्मात उसकी बुद्धि तथा विवेक और घर गृहस्थी का सारा बंदोबस्त उलट पलट हो गया। वह बेचारा कभी नहीं जानता था कि मनुष्य के भीतर में सारे उपद्रवकारी पदार्थ रहते हैं। ऐसी दुर्दांत दुरंत शक्तियां जो सारा हिसाब किताब और श्रृंखला सामंजस्य नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। केवल निवारण ही नहीं, हर सुंदरी को भी एक नई वेदना का परिचय मिला। किसकी आकांक्षा और किसके लिए ये दुस्सह यंत्रणा। मन इस समय जो कुछ चाहता है, कभी पहले तो ये नहीं चाह रहा था, कभी उसको पाया भी नहीं था। जब भद्र भाव से निवारण नियमित दफ्तर जाता, तब सोने के थोड़ी देर के लिए ग्वाले का हिसाब, चीजों की महंगाई और औपचारिक कर्तव्य विषयक आलोचनाएं होती। तब तो इस अंतर विप्लव की कोई शुरुआत तक नहीं थी। वह प्रेम अवश्य करता, पर उसमें कोई बल कोई उत्ताप नहीं था। वह प्रेम मात्र अप्रज्वलित ईंधन के समान था। आज उसे अनुभव हुआ, जीवन की सफलता से कोई उसे जैसे चिरकाल से वंचित करता आ रहा है। उसका हृदय जैसे चिरदिन से अपवासी बना हुआ है। उसका यह नारी जीवन घोर दारिद्र्य में ही बीत रहा है। उसने केवल हाट बाजार, पान मसाला, साग सब्जी, इन सब के झंझटों को लेकर ही 27 अमूल्य वर्षों को दासी वृत्ति में ही व्यतीत किया। और आज जीवन के मध्य पथ पर आकर देखा कि उसके ही शयन कक्ष के बगल में छिपे महामहेश्वर्य भंडार का ताला खोल एक छोटी सी बालिका एक बारगी राज राजेश्वरी बन बैठी है। नारी दासी अवश्य है, किंतु साथ ही साथ नारी रानी भी है। किंतु सारा हिसाब बंटाकर एक नारी दासी बनी और एक नारी रानी बनी। इससे दासी का गौरव तो गया ही, रानी का सुख भी ना रहा। इसी कारण शैलबाला ने भी नारी जीवन के यथार्थ सुख का स्वाद नहीं पाया। उसने इतना अधिक दुलार पाया जिससे प्रेम करने का पलमात्र अवसर नहीं मिला। समुद्र की ओर प्रवाहित हो, समुद्र में आत्मविसर्जन कर, शायद नदी की एक महत चरितार्थता है। किंतु समुद्र यदि ज्वार के खिंचाव से आकृष्ट हो लगातार नदी की ओर ही उन्मुख हुआ रहे, तब नदी केवल अपने में ही स्वयं सफित होती रह सकती है। गृहस्थी अपना सारा प्यार दुलार ले रात दिन शैलबाला की ओर अग्रसर होती रही। इससे शैलबाला का आत्म प्रेम अत्यंत उन्तुंग होकर चढ़ने लगा। गृहस्थी के प्रति उसका प्रेम पनप नहीं पाया। उसने जाना, मेरे लिए ही सब कुछ है और मैं किसी के लिए नहीं। इस स्थिति में पर्याप्त अहंकार भर है, किंतु संतोष जैसा कुछ भी नहीं। एक दिन घनघोर घटा छा गई। इतना अंधेरा हो आया कि कमरे के भीतर कामकाज करना मुश्किल हो गया। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। बेर के पेड़ के तले लताओं का जंगल जल में लगभग डूब गया और चार दीवारी के पार्श्ववर्ती नाले से मटमैला पानी कल कल ध्वनि से बह चला था। हर सुंदरी अपने नए शयन कक्ष के निर्जर अंधकार में खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। इसी समय निवारण ने चोर के समान धीरे धीरे द्वार से प्रवेश किया। वह ये समझ नहीं पाया कि लौट आए या आगे बढ़े। हर सुंदरी ने देखा पर कुछ बोली नहीं। तब निवारण ने सहसा एकदम तीर वेग से हर सुंदरी के पास जाकर एक ही सांस में कहा, दो चार गहनों की जरूरत आ पड़ी है। तुम जानती हो कि बहुत कर्ज चढ़ गया है, कर्जदार बड़ा अपमान कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बंधक रखना होगा, जल्दी ही छुड़ा लूंगा। हर सुंदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। निवारण चोर के समान खड़ा रहा। आखिर में फिर बोला, तो क्या आज नहीं होगा? हर सुंदरी ने कहा, नहीं। कमरे में प्रवेश करना जितना कठिन था, तत्काल बाहर निकलना भी उतना ही कठिन था। निवारण ने कुछ इधर उधर ताकते हिचकिचाते हुए कहा, तब क्या जाकर कहीं और कोशिश कर देखूं? कहते हुए वहां से चला गया। कहां ऋण चुकाना है और कहां गहने बंधक रखना होगा, हर सुंदरी ने यह सब समझ लिया। समझा नववधु ने पिछली रात अपने इस मति भ्रष्ट पालतू पुरुष को बड़े तीखे स्वर में कहा था, दीदी के पास संदूक भरकर गहने हैं और मैं एक आध भी नहीं पा पहन सकती। निवारण के चले जाने पर हरसुंदरी ने धीरे धीरे उठकर लोहे के संदूक को खोल एक एक करके सारे गहनों को बाहर निकाला। शैलवाला को बुलाकर पहले अपने विवाह की बनारसी साड़ी उसे पहनाई, फिर उसे सिर से पैर तक एक एक करके गहनों से लाद दिया। अच्छी तरह जूड़ा बांध कर दिया जलाकर देखा। बालिका का मुख बड़ा ही मधुर दिख पड़ा। अभी अभी पके सुगंधित फल के समान सुडोल रसपूर्ण। शैलवाला जब झनझन शब्द करती हुई चली गई, तो वह शब्द देर तक हरसुंदरी की शिराओं के रक्त के बीच रुंझुन कर बजने लगा। मन ही मन बोली, आज भला किस बाज में तेरी मेरी तुलना। लेकिन एक समय था जब मेरी भी यही उम्र थी। मैं भी तो ऐसी ही यौवन की शेष रेखा तब उभर उठी थी। पर मुझे ये बात किसी ने क्यों नहीं जताई थी? कब वह दिन आया और कब वह दिन चला गया, इसकी एक बार सूचना भी नहीं मिली मुझे। लेकिन किस गर्व से, किस गौरव से और कौन सी तरंग उठाती शैलबाला चलती। हर सुंदरी जब मात्र घर गृहस्थी ही जानती थी, तब ये गहने उसके लिए कितने मूल्यवान थे। तब क्या अभूत के समान यह सब ऐसे क्षण भर में ही हाथ से लुटा सकती थी? आज घर गृहस्थी के अतिरिक्त दूसरे किसी एक बड़े का परिचय मिला है। अब इन गहनों की कीमत और भविष्य का हिसाब सब कुछ तुच्छ हो गया है। और शैलवाला हीरे जवाहरात के जेवरात झिलमिलाते हुए शयन कक्ष में चली गई। एक बार पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि हर सुंदरी ने उसे कितना कुछ दिया। उसने यही जाना था कि चारों की सारी सेवा, सारी संपदा, सारे सौभाग्य स्वाभाविक नियम से उसी में आकर समाप्त होंगे, क्योंकि वह शैलबाला थी, वह सखी थी। ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वप्न अवस्था में निर्भीक भाव से अत्यंत दुर्गम पथ पर से चले जाते हैं, पल भर के लिए भी चिंता नहीं करते। बहुत से जागृत मनुष्यों की भी वैसी ही चिर स्वप्न अवस्था उपस्थित होती है, कुछ भी होश नहीं रहता। विपद के संकीर्ण पथ पर निश्चिंत मन से अग्रसर होते रहते हैं, अंत में दारुण सर्वनाश के सम्मुख हो जागृत हो उठते हैं। हमारे मैकमोरान कंपनी के बड़े बाबू की भी वैसी ही दशा है। शैलबाला उनके जीवन के बीच एक प्रबल आवर्त के समान चक्कर काटने लगी और बहुत दूर से विविध महार्घ आकृष्ट हो उसमें विलुप्त होने लगे। मात्र निवारण का मनुष्यत्व और मासिक वेतन, हर सुंदरी का सुख सौभाग्य और वस्त्र अलंकार ही नहीं, साथ ही साथ मैकमोरान कंपनी के नगद खजाने की भी चोरी छिपे मांग बढ़ने लगी और वहां से भी एक दो करके थैलियां अदृश्य होने लगी। निवारण निश्चय करता अगले महीने के वेतन से धीरे धीरे कर्ज चुका देगा, लेकिन अगले महीने का वेतन हाथ में आते ही उस प्रवृत्ति से ऐसा खिंचाव आता कि अंत में दो आने का सिक्का तक पल भर में चमचमाते तड़ित वेग से अंतर्हित हो जाता। अंत में वह एक दिन पकड़ा गया। वंशानुगत की नौकरी थी, साहब बहुत स्नेह करते थे। खजाना पूरने के लिए मात्र दो दिन का समय दिया। उसने धीरे धीरे कैसे 2500 रुपयों का गबन किया है यह निवारण खुद भी नहीं समझ सका। वह एकदम पागल की तरह हरसुंदरी के पास पहुंचा और बोला, सर्वनाश हो गया। हरसुंदरी सब कुछ सुनकर एकदम पीली पड़ गई। निवारण ने कहा, जल्दी गहने निकालो। हरसुंदरी बोली, वह तो सब मैंने छोटी बहू को दे दिए हैं। निवारण बिल्कुल शिशु सा अधीर हो कहने लगा, क्यों दिया छोटी बहू को, क्यों दिया, किसने तुमसे उसे देने को कहा था? हरसुंदरी उसका सही उत्तर ना देकर बोली, इससे क्या हानि हुई, वह पानी में तो नहीं बहाया है। कायर निवारण ने कातर स्वर में कहा, यदि तुम किसी बहाने उसके पास से निकाल सको, पर मेरे सिर की कसम, जो बताया कि मैंने मांगा है या किस लिए मांगा है। तब हरसुंदरी मर्मातक ऊब और घृणा से भर कर बोल उठी, क्या यह तुम्हारी बहानेबाजी या लाड दुलार करने का समय है, चलो। कहकर पति को साथ लेकर छोटी बहू के कमरे में गई। छोटी बहू कुछ समझी नहीं, उसने हर बार इतना ही कहा, यह सब मैं क्या जानू। गृहस्थी की किसी चिंता से उसे चिंतित होना होगा, ऐसी कोई बात क्या उसके साथ हुई थी। सब अपनी अपनी चिंता करेंगे और सभी मिलकर शैलबाला के आराम की चिंता करेंगे। अकस्मात इसका व्यतिक्रम हुआ, यह कैसा घोर अन्याय है। तब निवारण शैलबाला के पैर पकड़कर रो पड़ा। शैलबाला केवल यही कहती रही, यह मैं क्या जानूं? मैं अपनी चीजें भला क्यों देने लगी? निवारण ने देखा, वह दुबली सी छोटी सुंदरी सुकुमारी बालिका लोहे के संदूक से भी कठिन है। हर सुंदरी संकट के साथ पति की यह दुर्बलता देख घृणा से क्षीण हो उठी। वह शैलबाला से जबरदस्ती चाबी छीनने लगी। शैलबाला ने फौरन चाबी का गुच्छा दीवार के उस पार तालाब में फेंक दिया। हरसुंदरी ने हत बुद्धि हो पति से कहा, तो फिर ताला तोड़ दो। शैलबाला बड़े ही शांत भाव से बोली, तब मैं गले में फांसी लगाकर मरूंगी। निवारण ने कहा, मैं एक जगह और कोशिश करके देखता हूं। कहते हुए अस्त व्यस्त सा घर से बाहर चला गया। निवारण 2 घंटे में ही अपना पैतृक घर 2,500 रुपए में बेच आया। बहुत मुश्किलों से हाथ की हथकड़ी तो बची, पर नौकरी चली गई। चल अचल संपत्ति में केवल 2 पत्नियां रह गईं। उसमें से कलेश कातर बालिका पत्नी गर्भवती हो बिल्कुल अचल ही हो पड़ी थी। गली के नुक्कड़ पर एक छोटे सीलन भरे घर में उस छोटे से परिवार ने आश्रय लिया। छोटी बहू के असंतोष और दुख का कोई और छोर नहीं। वह किसी भी तरह समझ नहीं पाती कि यह उसके पति के बूते की बात नहीं। क्षमता नहीं थी तो विवाह क्यों किया था? ऊपर के तल्ले में मात्र 2 कमरे, एक कमरे में निवारण और शैलबाला का शयन कक्ष था और दूसरे कमरे में हरसुंदरी रहती थी। शैलबाला असंतोष जाहिर करती कहती, मैं रात दिन सोने के कमरे में ही बंद नहीं रह सकती। निवारण झूठा आश्वासन देकर कहता, मैं एक दूसरे अच्छे घर की खोज में हूं, जल्द ही ये घर बदल दूंगा। शैलबाला कहती, क्यों, ये बगल में तो दूसरा एक कमरा पड़ा है। शैलबाला ने अपने पहले के पड़ोसियों की ओर कभी मुंह उठाकर देखा तक नहीं था। निवारण की वर्तमान बुरी दशा से दुखी होकर वे एक दिन मिलने आई। चले जाने पर उसने क्रोध किया, रोई, उपवास किया, हिस्टीरिया के दौरे से सारा मोहल्ला सिर पर उठा लिया। इस प्रकार के उपद्रव अक्सर होने लगे। आखिर में शैलबाला शारीरिक संकट की अवस्था में भयानक पीड़ाग्रस्त हुई। यहां तक कि गर्भपात होने तक की नौबत आ गई। निवारण ने हरसुंदरी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, तुम शैल को बचाओ। हरसुंदरी रात दिन की परवाह किए बिना शैलबाला की सेवा करने लगी। तिल भर की चूक होने पर शैल उसे कटु वाक्य कहती, लेकिन वह एक का भी उत्तर ना देती। शैल किसी भी तरह साबूदाना खाना नहीं चाहती थी, कटोरी समेत फेंक देती। बुखार में कच्चे आम की चटनी से भात खाना चाहती। ना पाने पर गुस्सा हो जाती और रो रो कर कोहराम मचा देती। हर सुंदरी उसे मेरी रानी, मेरी बहन, मेरी दीदी कहकर शिशु के समान बहलाने की चेष्टा करती। पर शैलबाला बची नहीं। गृहस्थी का सारा लाड प्यार ले चरम दुख और असंतोष में बालिका का छोटा अपूर्ण व्यर्थ जीवन असमय ही नष्ट हो गया। निवारण को पहले तो बड़ा भारी आघात पहुंचा, पर दूसरे ही क्षण उसने पाया कि उसका एक बड़ा बंधन टूट गया। शोक के बीच ही सहसा उसने एक मुक्ति के आनंद का अनुभव किया। सहसा लगा इतने दिन उसकी छाती पर एक दुस्वप्न सवार था। होश आने पर क्षण भर में ही उसे अपना जीवन अतिशय लघु जान पड़ा। माधवी लता की तरह यह जो कोमल जीवन पाश छिन्न भिन्न हो गया, क्या वही उसकी दुलारी शैलबाला थी? सहसा गहरी उसांस भरकर देखा नहीं, यह उसकी बांधने वाली रस्सी थी और उसकी चिर जीवन संगिनी हरसुंदरी, वही तो उसकी सारी गृहस्थी की अकेली अधिकारिणी बन उसके जीवन के समस्त सुख दुख के स्मृति मंदिर के बीच बैठी है। लेकिन फिर भी बीच में एक दरार है, ठीक जैसे एक छोटी सी चमकीली सुंदर और निष्ठुर कटार ने आकर एक कलेजे के दाएं और बाएं हिस्से के बीच वेदनापूर्ण रेखा खींचती हो। एक गहरी रात में जब सारा शहर सोया हुआ था, तब निवारण ने धीरे धीरे हरसुंदरी के निभृत शयन कक्ष में प्रवेश किया। नीरव भाव से प्राचीन परिपाटी के अनुसार वह उस पुरानी शैया के दाईं ओर सोता रहा था, लेकिन इस बार भी अपने उसी चिर अधिकार में से, लेकिन एक चोर की तरह उसने अंदर पैर बढ़ाया। हरसुंदरी कुछ न बोली, न निवारण ने ही एक शब्द कहा। वे पहले जैसे पास पास शयन करते रहे, अब भी वैसे ही पास पास लेटे रहते, किंतु उनके ठीक बीचों बीच एक मृत बालिका लेट रही थी, उसे कोई लांघ न सका। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी मध्यवल्तिनी का दूसरा एवं अंतिम भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।